तृषा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। यहाँ अकेले मुझे डर लगता है और अपने घर में जाना नहीं चाहती। मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी वहां जाकर? उसकी बात सुनकर समर्थ के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और थोड़े शक वाले भाव आ गए, पर उसने जल्द ही अपने भाव सामान्य करते हुए कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। तृषा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपनी कॉफ़ी पीने लगी। समर्थ भी जल्दी से अपने कमरे में आकर तैयार होने लगा। रावत मेंशन। अमर जानवी की कमर पकड़कर सो रहा था और जानवी टस से मस नहीं हो पा रही थी। थक हार कर उसने अमर का गाल थपथपाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, सुबह हो गई है। अमर ने जल्दी से आंखें खोलते हुए कहा, सुबह सुबह अपने पति पर हाथ उठा रही हो? जानवी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, हरकतें मत किया करो ना ऐसे, मैंने सुना है दादाजी से, पहले तो आप इतनी जल्दी उठ जाते थे, जब से शादी हुई है आप बिगड़ गए हैं। अमर उसके एकदम ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों में अपने हाथ उलझाते हुए बोला, बिगड़ा कहाँ हूँ अभी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बीवी। जानवी ने कसकर कहा, अरे सांस नहीं आ रही है मुझे, बहुत भारी है आप। अमर ने उसके गले पर अपने गीले होंठ फेरते हुए कहा, ये वजन तो पूरी जिंदगी सहना है, अभी से आदत डाल लो। जानवी उसके होंठों की हरकत महसूस कर अंदर तक से हर उठी थी। इतना बोलकर अमर ने हल्के से उसके माथे को चूमा और उठते हुए बाथरूम की तरफ चला गया और जानवी ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। सुबह के करीब 10 बजे रावत मेंशन। मेंशन के सामने समर्थ की कार आकर रुकी और उसमें से समर्थ और तृषा साथ में उतरते हुए अंदर की तरफ आए। तृषा बाहर से मेंशन को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, मेरी इतनी अच्छी शादी होने वाली थी इतने बड़े घर में, और कहाँ मैं किसी बेवकूफ़ की बातों में आ गई। वो बच्चा शायद मेरी ज़िंदगी में वैसे भी नहीं लिखा था। अगर मैं अबॉर्शन करवा लेती और अमर से शादी कर लेती तो आज मुझे ये दर्द झेलना नहीं पड़ता। तृषा मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हुए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। वहीं समर्थ टेंशन में था कि वो घर वालों को क्या बोले। कुछ देर बाद वे दोनों अंदर पहुंच चुके थे। जानवी माही के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। तृषा की निगाहें जैसे ही जानवी पर पड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जानवी तुम यहाँ? जानवी ने जैसे ही तृषा की आवाज़ सुनी उसने अपने भारी पलके उठाकर सामने देखा और तृषा को देखकर उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। वो लगभग दौड़ते हुए उसके करीब गई और उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, दीदी आप आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, कहाँ चली गई थी आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं आपके साथ? समर्थ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे अरे मिस ब्यूटीफुल, थोड़ा सब्र लीजिए, अपनी बहन को बिठाइए, इसे पानी पिलाइए, फिर पूछिए क्या हुआ क्या नहीं। जानवी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं हूँ ही पागल, चलो दीदी बैठो। ऐसा बोलते हुए उसने तृषा का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। उसने तृषा को सोफे पर बिठाया और फिर पानी का ग्लास उसके सामने रखते हुए बोली, अब बताइए दीदी आप कहाँ चली गई थी, आपको पता है आपके लिए सब कितना परेशान हो रहे थे। तृषा तो सदमे में जा चुकी थी। जानवी के गले में मंगलसूत्र, उसकी मांग में लाल सिंदूर, हाथों में भरी लाल चूड़ियां ये बताने के लिए काफी थी कि उसकी शादी हो चुकी है, पर किससे? तृषा के मन में एक ही डर बैठ चुका था, क्या अमर ने उसका इंतजार नहीं किया और उसने शादी कर ली, वो भी जानवी से? रजत जी और कल्याण सिंह जी एक दूसरे से बातें करते हुए उधर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही तृषा को देखा कल्याण सिंह जी ने गुस्से में कहा, ये धोखेबाज लड़की यहाँ क्या कर रही है? और समर्थ की आंखें फैल गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या बोले। तृषा ने कल्याण सिंह जी की तरफ देखा, वो उन्हें बखूबी पहचानती थी कि अमर के दादाजी हैं। कल्याण सिंह जी ने फिर से उसके करीब आते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को धोखा देने की? तुमने सोचा भी कैसे लिया कि तुम रावत खानदान को धोखा देकर बच भी जाओगी? उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर तृषा एकदम से डर गई। समर्थ ने तृषा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, और फिर कल्याण सिंह जी की तरफ देखते हुए कहा, कल्याण सिंह जी इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ये शादी से जानबूझकर नहीं भागी थी, इसकी अपनी एक मजबूरी थी, इसने किसी को धोखा नहीं दिया है, इसको भी किसी ने धोखा दिया है। कल्याण सिंह जी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पर ये सब तुमको कैसे पता है, तुम कहाँ से लेकर आए हो इसको? समर्थ ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं भी आप ही की तरह इसको ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे भी यही लगा था इसने मेरे भाई को धोखा दिया है, और जब ये मिली तब मुझे पता चला कि इसकी कोई गलती नहीं थी, ये बस एक मोहरा थी जिसे इस्तेमाल किया गया था, और किसने उसे किया है ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं, तो इस पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं है।